शरणम हरि शरणम हरि शरणम
हरि शरणम हरि शरणम।
ऐसे अभी तक रानी अपने हृदय में अपने आप को अकेला मान रही थी, मैं अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं, मेरा साथी कोई नहीं। परंतु जब आज गुरु महाराज ने उसे भगवान नाम प्रदान कर बता दिया कि परमात्मा का नाम तुम्हारे साथ में है, तुम नाम को नहीं छोड़ोगे तो भगवान तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, उसके मन में विश्वास हो गया कि नहीं, आज से भगवान मेरे साथ में है, अकेले अपने का दुख मिट गया, मैं अकेली हुई नहीं। हम भी अपने आप को अकेला मानते हैं तो मूर्खता है, अकेले क्यों, परमात्मा सबके साथ में निरंतर रहने वाले हैं, कभी अकेले हो नहीं सकते, सदा हमारे साथ रहने वाले हैं, तो अकेले हो नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में हम जबरन अकेले बनते हैं कि मैं तो अकेला हूं, मैं तो अकेला हूं, अकेला क्यों, नहीं, परमात्मा हमारे साथ में है। लेकिन ये बात गुरु महाराज के शरण में जाते हैं तब बात समझ में आती है, उनकी बात को हम अपनाते हैं तब इस बात का अनुभव होता है। चलो, महात्मा जी ने उस भाई को मुक्ति का मार्ग बताया, हरि नाम की दीक्षा देवी और उपदेश राम नाम का मंत्र दे करके, और वहां से वे संत महात्मा चलते बने, चले गए संत महात्मा पे। पीछे वो अपने भगवान नाम का जप कर रही है, जैसी महात्मा जी ने रीति बताई उसी रीति से अपना नाम में आन ले रही है, और तो कोई काम है नहीं, करना क्या, जब भी हो भगवान नाम का जप करना, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा। और जब खाली हो तो दुनिया की बातें याद आवे, अब टाइम खाली है ही नहीं, 24 घंटे राम नाम का स्मरण जप है, रात को नींद आवे जब आ जावे, उठे तो फिर वही नाम और वही जप, इस प्रकार उसके जीवन में नया प्रकाश पैदा होने लग गया। सर्ब तीर्थ कर्त राजा देश आपन आय, मगरूर मन बल बहुत धर्मी संजय सिद्ध उपाय, बाघ थानक की ओर ढेरो सर्व सैन्यालार, सैन रजनी आय इजगर दिया घेरा पार, काल नरपत देख भयानक नारक होने उपाय, ब्याल कह मैं खाया भी भूख सुन चल जाय, करत हाहाकार सैन्या भोर दे के सोय, पीव पत्नी एक थानक मरण आयो मोय। अब राजा बुद्ध तीर्थ यात्रा में गया हुआ था, कई तीर्थों में यात्रा करने के बाद एक दिन वापस लौट करके आया। इतने दिन तक तो तीर्थ यात्रा की नहीं थी, लेकिन अब तीर्थ यात्रा करके आया हूं, तो राजा को बड़ा भारी मन में अहंकार पैदा हो गया कि मैं इतना तीर्थों की यात्रा करने वाला बड़ा तीर्थ यात्री हूं, मैंने इतने तीर्थ यात्रा कर ली, मैंने इतना दान कर दिया, मैंने इतने ब्राह्मणों को भोजन करा दिया, मैंने इतने लोगों को तीर्थ यात्रा करवाई है, मेरे जैसा कौन धर्मात्मा होगा। ये अहंकार भर गया, बहुत ज्यादा हो गया राजा के, पहले तो कम था वो ज्यादा बढ़ गया। मगरूर मन बड़ बौद्ध धर्मी, मैं बड़ा धर्मात्मा हूं, आज मेरे सारे मनोरथ सफल हो जाएंगे मेरे इस प्रकार पुण्य के प्रताप से। ऐसे विचार करते करते राजा अपने नगर में आया, नगर के बाहर एक बगीचे में रात्रि में विश्राम किया। कल से नगर में धूमधाम के साथ में शोभा यात्रा निकाल करके और जुलसा निकाल करके नगर प्रवेश करेंगे, एकदम सीधे कहा चले जाएं घर में, सब दुनिया को मालूम पड़ना चाहिए कि भाई इतना बड़ा राजा और इतने इतना धर्म पुण्य काम किया है, वो राजा आज आए हैं, इसलिए सब लोगों को इसकी सूचना हो जानी चाहिए। अपने बगीचे में रात्रि में डेरा डाला, विश्राम किया, सारी सेना भी उसके उसी बगीचे में विश्राम करने लगी। रात के समय में राजा सो रहा है, पास में रानी सो रही है, वे रात में जब बगीचे में एक जगह सो रहे थे कि अचानक एक बड़ा भारी अजगर वहां आ गया, भारी अजगर आ गया वहां पर, और अजगर भारी इतना, राजा रानी जो दोनों सो रहे हैं उसने चारों तरफ घेरा लगा दिया, उन लोगों उन राजा रानी को अपने घेरे में ले लिया, कहीं भाग नहीं जाए, इस हिसाब से रात को सो रहे थे, सोते सोते उनको क्या पता। तो सैन रजनी आए अजगर दिया घेरा पार, काल नरपत एक भयानक, अब वो घेरा डाल करके अजगर बैठा है, और इतने में राजा की आंख खुली, अजगर की फूंक से आंख खुल करके बैठा देखा अजगर, इधर देखे जिधर देखे चारों तरफ अजगर ने उसको घेर लिया है, बांध लिया है। पास में सोनी रानी उसको जगाया, देख अजगर आ गया, अपन को मार रहा है, खा जाएगा, क्या करे। अजगर बहुत बड़े बड़े अजगर होते हैं ना, देखो निकल जाते जीव जानवरों को। दिया घेरा पार काल नर पर देख भयानक नार कौन उपाय। अब औरत से कहने लगे, रानी से कहने लगे, राजा देवी अब तो मौत आ गई, क्या करें, इससे बचने का क्या उपाय करें, कोई उपाय हो तो काम में ले आओ, नहीं तो अरे इतने दिनों में यात्रा में कहीं कोई संकट नहीं आया, घर आते ही संकट आ गया, कैसी मुसीबत हो गई। अगर ऐसी बात मालूम होती तो सीधे घर पर पहुंच जाते या रुकते ही नहीं, लेकिन अब करें क्या, आ गई मुसीबत, अब नार कौन उपाय। इतने में अजगर बोला है, ब्याल कह मैं खाए अभी फूंक सुन जल जाए, तुम बचने की कोशिश मत करना, मैं तुम्हें अभी खा जाऊंगा, अपनी जहरीली फूंक दे करके यदि बचने कोशिश करो फूंक से तुम्हें जला डालूंगा, भाग करके कहां जाओगे तुम, मेरे सामने जा नहीं सकते। अब वो इस प्रकार वहां अल्लाह मच गया जोरदार, सारी फौज थी, सैनिक लोग थे वो भी सब जग गए, आका उल्लड़ में करत हाहाकार, सेना भी आकर के चारों तरफ हो अल्लाह मचाने लगी। मान लो हमारे अल्लाह गुल्ला करने से अजगर भाग जाए तो, लेकिन भागने की अपेक्षा उसको राजा को काट खाया तो क्या करेंगे, इसलिए डर भी लग रहा है। बहुत देखे सोई, जब उन लोगों ने भी सुबह होते होते राजा की ये दशा देखी, पीव पत्नी एक थाने के मरण आयो हुए, पति पत्नी दोनों की एक ही जगह मौत, आज कैसी बड़ी खतरनाक आ गई है। संसार में पति पत्नी कभी साथ नहीं मरते, या तो कभी पति मरता है या कभी पत्नी मरती है, आगे एक कोई ना कोई तो आगे जाता ही है, लेकिन साथ में यहां तो दोनों एक साथ में मरते दिखाई दे रहे हैं, क्या दशा होगी, कैसे किया जाए। अब राजा विनम्र बन करके और अजगर से हाथ जोड़ करके विनती करता हुआ कहने लगा है, अब ध्यान देना क्या, नेम व्रत किए सब साजन धर्म लहो पण जीव उभारो, तीर्थ व्रत गायत्री पाठक सैन्य राज कृतंत तुम्हारो, ब्याल कहे पुन सर्व भुगेतन का कोट अनेकन छूटन हारो, रानी एक दिवस गुरु फल तो तुम राजा निशंक बधारो। राजा हाथ जोड़ करके अजगर से विनती करता हुआ कहने लगा कि हे महाराज, हे अजगर महाराज, आप जिस किसी भी तरह से मुझे छोड़ सकते हैं तो छोड़ दीजिए। देखो मैंने अपने जिंदगी में जितने भी नियम पालन किए हैं, जितने व्रत किए हैं और जितने भी और संसार के साधन किए हैं, जितने भी धर्म पुण्य किए हैं, मेरे सब के सब में वो धर्म पुण्य व्रत उपवास वगैरह आपको दे रहा हूं, आप ले लो, लेकिन मुझे जिंदा छोड़ दो, जी उबारो, मेरे जीव की रक्षा करो, मैंने जितनी तीर्थ यात्रा की है सारी तीर्थ यात्रा आपको दे रहा हूं, लो सर तीर्थ यात्रा आपको दे रहा हूं, मेरे किए सारे व्रत गायत्री जी के पाठ जो किए मैंने, गायत्री मंत्र जपा है वो आपको दे रहा हूं, और जो कुछ शास्त्रों का अध्ययन पठन श्रवण मनन किया है वो भी आपको दे रहा हूं, आप सेना राज मेरा ही नहीं मेरे पूरी सेना का ये शुभ कर्म किया हुआ जितना भी दान पुण्य है वो मैं आपको दे रहा हूं, आप उसे ले लो और हमें छोड़ दो, मेरी प्रार्थना सुनो। बात सुनी तो अजगर कहने लगा है, ब्याल कहे अपने सर भुगेतन, अजगर ने कहा महाराजन तुम ये जो तुम मुझे देना चाहते हो ना, ये तो मेरे पास में आगे ही बहुत पड़े हैं, पहले भी बहुत पड़े हुए, मैं इनका फल भोग चुका हूं और इनसे कोई काम बढ़ने वाला नहीं है, ऐसे भले करोड़ उपाय तुम क्यों नहीं कर लो, तुम छूटने वाले नहीं हो, मैं नहीं छूटूंगा इन उपायों से। तो अब जो कुछ अपने पास में थैली थी खोल करके बता दी, अटैची खोल के बता दी, अब क्या करें बेचारा, कोट अनेक न छूटना आरो, तो और छूटने का कोई उपाय आप बता दो, कैसे छूट सकते हम, कहा, ब्याल कहे रानी एक दिवस गुरु फल तो तुम राज निशंक बधारो। आपकी रानी ने एक दिन गुरु मरा गुरु मुखी बनी हुई रानी का एक दिन जो गुरु शरणागति का उपदेश लिया है, उस गुरु उपदेश लेने वाली रानी के एक दिन का जो साधन है वो आप मुझे दे दो और उसके बाद में निशंक पदार्थ फिर मैं नहीं काटूंगा गुरु फल। एक दिन गुरु सत्संग की है गुरु महाराज की तुम्हारी रानी ने, वो दे दो बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैं उसके बिना ये सारा पंपाल का फल भोग रहा हूं आज इस अजगर जोड़ी में, अगर वो चीज मिल जाएगी तो मैं निहाल हो जाऊंगा, मेरा बंधन छूट जाएगा, उसके बाद में मैं आपको और आपके पूरी सेना को छोड़ दूंगा, किसी से कुछ भी नहीं कहना। कून चरित परे सब पायन अपने यार तजाय मनाई, रानी के राजा को भेद मिट्यो जीव एक सबक देखा तसदाई, जन परमार्थ जीव कृदारत चौथे से सम पिंड छुड़ाई, जन रामा गुरुदेव अपम पर पूजन सेव ग्रथ में गायी। राजा की परिस्थिति में ये जो बात सामने आई कि भाई गुरुमुखी बनी हुई रानी ने, अब ये रानी तो साथ में ये तो गुरुमुखी बनी हुई है नहीं, राजा को मालूम है कि मेरी रानी तो जो मेरी चेतन है वो तो गुरुमुखी है नहीं, कभी इसने सत्संग किया नहीं, तो इस तो किए तो मुझे क्या देगी। हाँ दूसरी रानी वो रात दिन भजन करती है, मैंने कभी उसकी उसकी सार संभाल नहीं ली है, परंतु तो वो देने वाले नहीं मेरे से रूठी हुई है, तो जब मैंने कभी उसे नहीं पूछा तो वो क्यों देगी मुझे, वो तो मेरे लिए नहीं जीव है, मैं उनके लिए नहीं जीव हूं। फिर भी शायद किसी साधु पुरुष को दया आ जाए तो आ जाए, किसी व्यक्ति को भेजा उस रानी के पास में, आप जाओ और मेरे संकट की बात उस रानी को बता दो, ऐसे संकट में पड़ा हुआ हूं मैं, मृत्यु के मुंह में पड़ा हूं, यदि तुम बचाना चाहो तो बचा सकते हो, तुम्हारे हाथ में मेरा जीवन है। वो आदमी गया रानी के पास में, कूण चरित्र परे सब पायन, अब वहां एक नहीं कई आदमी मिलकर के रानी के पास में गए, जाकर के दंडोत प्रणाम किया रानी को, गर्ज घोटी हुए भाई गर्ज खोटी कड़ी हुए, दंडोत प्रणाम किया रानी को, क्या बात है कैसे आए हो, क्या कैसे बार बार दंडोत कर रहे हो आप लोग। उसने सारी बात बताई, रानी जी हम लोग बड़े अपराधी हैं, लेकिन आप साधु पुरुषों को क्षमावान हो, इसलिए आप हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमारी विनती सुनो। बोलो बात क्या है, बात तो बताओ आखिर में है क्या, है क्या। हमारे स्वामी राजा साहब तीर्थ यात्रा करके वापस लौट रहे थे, रात्रि में बगीचे में विश्राम किया, वहां एक आकर के अजगर ने उनको घेर लिया और वो अजगर के काल के मुंह में फंसे हुए हैं। अब अजगर को दान पुण्य धर्म तीर्थ यात्रा के सब पुण्य देने की बात राजा साहब ने कही, परंतु अजगर ने मना कर दिया, नहीं इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं, आप यदि छुटकारा चाहते हो तो एक काम करो, आपकी रानी ने जो संतों की गुरु महाराज की सत्संग की है वो एक दिन की सत्संग मुझे दे दो और उसके बाद में आप निस्संग होकर के महल में पधार जाओ, मैं छोड़ दूंगा। ये उस राजा के बचाव का प्रस्ताव अजगर का बताया हुआ है, तो अब आप अपनी दया दृष्टि से यदि राजा को बचाना चाहते हो तो आप अपने सत्संग का फल हमारे राजा साहब को दे दो तो उनका जीवन बच जाएगा। रानी ने बात सुनी, गंभीर विचार, सत्पुरुष होते हैं ना अपनी दूर दृष्टि रखते हैं, अपने मंडूक दृष्टि नहीं रखते। रानी के आपने यार जाए मनाई, रानी के राजा को भेद मिट्यो जो, रानी के हृदय में राजा है या मैं हूं मेरी परवाह नहीं करते हैं, ये बात भूल गई रानी की। सत्संग के कारण से राजा के प्रति, आखिर में एक राजा है वो एक व्यक्ति है, आत्मा है, उस आत्मा का बचाव करना रक्षा करनी मेरा कर्तव्य है, यदि मेरे कारण से उनकी रक्षा होती हो तो मुझे जरूर करनी चाहिए, बदला लेना हो तो लेने के नहीं, मारे नहीं जान रहा कि मैं कह रहा हूं तो मारो कोई लेने देना, मना कर देती रानी। लेकिन नहीं, आत्मभाव है। मेरे को यदि कोई तकलीफ होती है, संकट आता है, तो दुख होता है, तो राजा को भी कितना कष्ट हो रहा होगा। उनका दुख दर्द ही तो बस मेरा ही तो है, कोई वो दूसरे थोड़ी है। मेरी आत्मा और उनकी आत्मा कोई अलग अलग है नहीं, और मेरे कारण से उनको लाभ मिलता है तो मुझे जरूर देना चाहिए। एक सर्वज्ञ देखा तो सदाई, सब में एक ही परमात्मा को देखा करते हैं। परमार्थ भाव रख करके जीवों का कल्याण चाहने की भावना से वो रानी खुद वहां पर गई, और चौथे शेषम पिंड छुड़ाई, अर्थात एक दिन के चतुर्दंश भाग, एक दिन रा घंटा वे 24 पूरा तो कह दिया। अजगर ने कह दिया कि एक दिन की सत्संग तो नहीं दू तने, यदि तने लेना है तो चौथे हिस्सों दे दू तने, चौथे हिस्सों मतलब 6 घंटा की सत्संग लेना है तो लेन पिंड छोड़। वो देखे नहीं तो नहीं मिली तो मारे तो, और जन्म चक्र में जो दुख भोग रहे हो, अजगर योनी हो, आ मारी अजगर योनी छूटेला को नहीं, और आ नहीं दे वाला दूसरे को लेने वाला मिलेला नहीं। तो राजा को संकट में डाल करके भी उसने रानी को बुलाया, पर रानी ने शर्त के मुताबिक चौथे दिन का भाग का भाग एक दिन सत्संग कह दिया कि ये तुम्हारे को देती हूं ले लो, पर राजा को छोड़ दो। डर के बारे देखे नहीं दे तो करा कर दूसरी जगह मिलने वाली है नहीं। उन्हीं टेम अजगर मस्तक झुका करके रानी के चरणा में प्रणाम कर देवे, और राजा ने रानी ने जो बंदर में डाल रहे था वह मुक्त कर दिया और कह दिया आप थे थारे ठिकाने जाओ। आज मारे घोर संकट ने आ रानी आकर के छुड़ा दियो है। उन्हीं टेम दिव्य शरीर भयो वह ब्याला, देखत राज परम खुशी आला, तुम राजा अपराध मिटायो, साद प्रसाद लिखो न लिखायो। रानी के चरणों में जो ही उस अजगर ने सिर झुकाया, प्रणाम किया, उसका शरीर वहीं पर नष्ट हो गया, अजगर मर गया, और उसमें से दिव्य देवता रूप एकदम सोने के समान चमचमाटा देव रूप प्रकट होकर के आदमी सामने आया। आते ही रानी के चरणों में उसने प्रणाम किया दिव्य से आकर के। अब देखकर राजा देख रहा है कि क्या तमाशा है, अभी अजगर मेरे लिए मौत बना हुआ था और ये देव पुरुष बन गया केवल सत्संग के 6 घंटे के सत्संग के प्रताप से। धन्य भाग्य हो भाग्य है, कितना इसका विचित्र प्रभाव है। तुम राजा अपराध मिटायो, अब वही अजगर राजा जो देव पुरुष बना हुआ दिव्यकार बना हुआ है, देव रूप में बन करके राजा को प्रणाम कर रहा है और कहने लगा राजन तुम्हारे पास आने से मेरा ये संकट मिट गया। मैं इस अजगर योनि में वर्षों तक भटक रहा था, आज तुमने पिंड छुड़ाया है, आपने संतों के प्रभाव के कारण से मुझे मुक्ति मिली है, इसलिए मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ, बार बार प्रणाम करता हूँ। उस देव पुरुष ने प्रणाम किया। संतों का जो प्रभाव वो पहचानने में आने वाला नहीं है, पहचान सकते नहीं है। नृप कयो कूण उर्गतम यागत कैसे पाए, गुरु वे मुख पाए सजा सो संक्षेप सुनाए। राजा ने कहा तू है कौन भाई, बात बता तो सही, तुम्हारी ये दुर्गति कैसे हुई, मुझे संक्षेप में ये बात बता दो। तब सर्प ने जवाब दिया वापस, नृप त्रिशंकुज के वंश माई वासम राज हमारो भाई, गुरु प्रसाद मेट पखवंशा महापातक प्रकटो जीवे अंशा वासठ मुनि सिख जो सो जग स्वामी जन स्वामी गुण चोरक में भयो हरामी, अंतकाल करुणा का जो आई शंस जून या बाई, सुई वंश अंश जन आवन भूर भाग्य राणी गत पावन, ता प्रसाद कृतार्थ मेरो भूर भाग्य राजा जन तेरो, तो घर पत्नी वंश उदाहरण सेवा साध राम इध कारण, तब तत्काल विमान से आयो दिव्य रूप जन लोक से धायो। जब ये बात पूछी कि आप कौन है, ये दुर्गति आपकी कैसे हुई, तब उसने जवाब दिया कि देखो त्रिशंकु राजा जिस वंश में हुए तुम जानते हो ना, सूर्य वंश में, उसी वंश में मैं एक राजा था पहले, वासम राज हमारो भाई, उसमें मेरा भी राज था, उसी भाई बंधु उसी कुटुंब परिवार में, गुरु प्रसाद मेट पक्ष वंशा, मैंने उस वंश में रहते हुए एक बार गुरु मर्यादा मिटा दी, गुरु आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, और जैसे मर्यादा पालन करनी चाहिए मैंने वो छोड़ दी। इसलिए मेरे में नहीं मालूम कोई न कोई बड़ा भारी पाप का अंश प्रकट होकर के आ गया। गुरु वशिष्ठ जी महाराज, उन्होंने नाराज होकर के मुझे श्राप दे दिया। मैं उनका गुणचोर बन गया, नमक हरामी बन गया, इसलिए उन्होंने मुझे अजगर योनि में जाने का श्राप दे दिया। परंतु साधु पुरुष है, उनको दया भी जल्दी आ जाती है। साधु और प्रणिपात ने मैंने जो हाथ जोड़ लिए, उनको दया आ गई और कह दिया कि 1000 वर्ष की तेरी अजगर की योनि रहेगी जरूर, परंतु जब बाद में इसी वंश में एक कोई हरिभक्त राजा होगा और उसकी भाग्यशाली रानी जो होगी, उस रानी के प्रताप से तेरी सदगति होगी। आज उन्हीं की कृपा से मेरा अहोभाग्य है जो आपके मुझे दर्शन मिले, आपके घर पर ऐसी पत्नी महाराज जो वंश का उद्धार कर देने वाली है, बड़ी भाग्यशाली है। आप भी बड़े भाग्यशाली हो जो आपकी रानी संतों की सेवा करने वाली है, राम नाम का जप करने वाली है, परम तपस्विनी है, वो वंदनीय है महाराज। इस प्रकार मैं उन्हें बारंबार वंदन करता हूँ, इस माता जी को बार बार प्रणाम करता हूँ। ऐसे जो ही उसके चरणों में द्वारा प्रणाम किया, उसी समय आकाश में से विमान आया और उसे विमान में बैठा करके देवलोक में लेकर के चल दिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आत बैठ रानी करी चून जवा प्रसाद, वासम तुलेन धर्म सब कारण संत अगाद। देखो जो एक राजा की अनुमानित रानी हुई है, परित्यक्ता रानी है, उस रानी ने गुरु महाराज की सेवा के बोझ उनको प्रसाद कराया, तो काय का प्रसाद कराया? चून जवा प्रसाद, जवारे आटे की रोटी खिलाई हो उन्हें खाने वाले जवारे जवी देवता बेचारी जव वहां आटो पीस वह रोटी खाओती, तो वही भोजन महात्मा जी को कराया। जो पास में है वो करावे और दूसरी चीज करावे क्या? बोले हाथ बैठ, हाथ से सेवा चाकरी करी और भोजन में जव का आटे का प्रसाद कराया, तो ऐसे उस हाथ से की हुई सेवा के बराबर और जौ के आटे से की हुई सेवा के बराबर राजा के द्वारा किए हुए लाखों करोड़ों रुपयों के दान पुण्य सब बेकार हो गए, उसकी बराबरी नहीं कर सके। कारण संतगात, क्योंकि इसमें सच्चाई का आश्रय है और उसमें केवल अहंकार का आश्रय था। परमात्मा अहंकार को दूर करना चाहते हैं, अहंकार को भगवान की खुराक बताया है, भगवान की खुराक है। हमारी खुराक जैसे अन्न है, उसी प्रकार भगवान की खुराक अहंकार है। जो भी अहंकार करता है उस अहंकार को भगवान खा जाते हैं। इसलिए हाथ बैठ रानी करी चुन जवा प्रसाद, तासम तुलेन धर्म सब कारण संत अगाध। धर्म कितने हुए लेकिन वो धर्म राजा का कल्याण नहीं कर सके। नृप लीनो रानी को शरणो, अपनो काज आप में करणो, सर्व नगर में भक्त चलाई, राम नाम गुरु पूज सदाई, जन धर्म के नाम है जाको, कहो वर्णो वर्ण करूं जस जाको, जनु जनु संगता ग्रंथ बगाई, ऐसी भगत भई वा भाई, भगत राज जाको सिद्ध नामा, सुगत करण हमारो कामा। बाद में उस राजा ने भी अपने अपराध की क्षमा याचना कर रानी का आश्रय लिया, उसका खूब आदर सम्मान किया अपना। अब उसको विश्वास हो गया, अरे मेरा उद्धार तो मेरे घर में ही मौजूद है, मेरा कल्याण मेरे घर में मौजूद है, लेकिन इसे करने के लिए समझदारी की आवश्यकता थी। आज इसी की कृपा से मेरी आंखें खुल गई है। उसके बाद में अपने घर में जाने के बाद राजा ने पूरे नगर में भक्ति का प्रचार किया। गुरु महाराज बुला करके गुरु महाराज की आज्ञा में सभी लोगों को लगा दिया, राम भजन करने में सब लोगों को लगा दिया। अब उस राजा का नाम धर्मज्ञ नाम राजा पड़ गया। अब उसका यश कहाँ तक मैं वर्णन करूं, दयाल जी महाराज बताते हैं भाई। जनु संगता ग्रंथ में आए गई कि संगीता में इन इस कथा का वर्णन हुआ है, ऐसी भक्ति भाव रखने वाली वो बाई हुई है। भक्त भक्तराज ताको विद नामा, उसका आगे चल करके भक्तराज नाम पड़ा बाई का, सोगत कर्ण हमारो कामा, वो हमारा कल्याण करने वाली है और उनका आश्रय ले लिया जाए तो अवश्य जीव धन्य हो जाता है, धन्य हो जाता है। गुरु पारक भक्ति विद जानी, मेरो मेरी बुद्धि ठिकाने यानी। अरे आज मेरे भावों को पहचान करके तुझने भी मेरा कल्याण करने का रास्ता खोल दिया है। वो कौन? नेमीचंद बोल रहे। नेमीचंद क्यों? नेमीचंद जी तो अपने उस सेठानी से बातें कर रहे थे, शुद्ध कन्या से। वो शुद्ध कन्या वो गुरुमुखी बन गई थी, वही बता रहे गुरु पारक भक्ति विद जाने, तेने भी गुरु महाराज की परीक्षा करके भक्ति का रास्ता पकड़ लिया है और मेरी बुद्धि भी तेने ठिकाने लगा दी है, इसलिए मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। भक्तदासी अर्थात वो जो शुद्ध कन्या है वो कहने लगी, सूरज बिन किरणा नहीं, शशि बिन शीतल नाय, स्वामी जन पर तापयो जुगल मनोरथ माय, गुण गाही थी राजना भगत पुंज भरपूर, देखत गुण मिटिया सबेर जिन गट उगा सूर। सूर्य के बिना जो किरणें प्रकाश देने वाली कभी नहीं होती, चंद्रमा के बिना शीतलता नहीं होती है, इसी प्रकार हे पतिदेव गुरु महाराज के कृपा के बिना इस संसार में जीवन का कोई उद्धार का मार्ग नहीं है। जो गुणग्रही होते हैं वे ऐसे सत्पुरुषों का संग करके अपने जीव का उद्धार कर लेते हैं, मनुष्य जीवन को सफल कर लिया करते हैं। इस प्रकार अब दोनों के शरीर के विकार नष्ट हो गए, दोनों ही भगवान का भजन करने में लग गए। अब पक्षियों की सेवा का जो उन्होंने नियम पकड़ा था, जिसके प्रताप से नेमीचंद का बचाव हुआ, उन्हीं पक्षियों की सेवा को उस नेमीचंद ने निरंतर आगे बढ़ाते रखा, नहीं इसको कम मत करने दो, इतना अच्छा है काम, इतनी शक्ति जिसमें जो मृत्यु को भी टालने की शक्ति रखती है, ऐसे नियम को क्यों छोड़ा जाए। सेवा करे पंखी नित नेमा, आशा रहित वचन जन खेमा। पर यहां एक बात ये शर्त बताइए भैया, सेवा तो करते हैं लेकिन नित नेम के साथ में, पर आशा रहित, किसी प्रकार की कोई आशा नहीं रखनी चाहिए सेवा करने में, आशा नहीं रखनी चाहिए। यह आशा हम पहले जोड़ लेते हैं, अरे मंदिर में जमा ठाकुर जी ने नारियल चढ़ावा तो महाराज मारो काम को पूरा कर दो, और कटे गए तो पूरे पंचे करे, पहले महाराज विनती तो कर दे मैं आप 100 रूपये रो 5 रूपये प्रसाद चढ़ा वाला मारो काम पूरा कर दीजो, भरोसों को नहीं कहता पूरा काम नहीं करे तो मैं 5 रूपये फालतू तो खराब क्यों करा, पहले नहीं चढ़ा बाद में देखा जाएगा, वो कर दे तो चढ़ावा नहीं चढ़ा। आशा है काम के लिए पहले मेरा ये मनोरथ पूरा हो जाए, मेरी इच्छा पूरी हो जाए, मेरी मंशा पूरी हो जाए, क्या मैं इन्हें सवाए कहीं नहीं चाहूं, मैं कहीं नहीं चाहूं, और चाहना देखो पहले लगी हुई है, केवल और हो जावे हमारे एक छोर हो जावे बस, मुझे कहीं नहीं चाहूं, एक ही जगह दूजे हो जावे तो और कहीं नहीं चाहिए। अरे भाई इच्छा तो सबसे पहले लगा रखी है तो इच्छा है वो तो भटकाने वाली है ही, संताप देने वाली है। तो इस प्रकार यहां आशा रहित या हरेक कुछ सेवा काम की जाए तो निष्काम सेवा होनी चाहिए, जहां सकाम सेवा होती है सकाम सेवा में पात्र के अनुसार फल मिलता है, सकाम सेवा में पात्र के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। आपने कभी कभी देखो एक थोड़ी बात बीच में दूसरी बताने की याद आ गई, एक शिकारी आदमी जीव हिंसा करने वाला है, वो आदमी एक दिन धूप और पानी में पानी के बिना तड़पता तड़पता मरने लगा। हम वहां से जा रहे थे, हमने उस आदमी को देख लिया, जानते शिकारी है, धनुष बाण पास उसके पास में पड़े हुए हैं, उस मरते हुए प्राणी को हमने पानी पिला दिया और हमने उसको रोटी खिला दी। उसके बाद वो वहां से जाकर के जितने जानवरों को मारेगा उनका पाप हमारे को भी मिलेगा, पाप हमारे को लगेगा, ध्यान रखना हो, कब लगेगा कि हमने आशा की, मैंने इसको पानी पिलाया, रोटी खिला करके पुण्य किया, इनका पुण्य मिलना चाहिए मुझे, पुण्य होगा। पुण्य की जो आशा कर ली, पुण्य तो उसके पास में है नहीं, जो पाप है पाप मिल जाएगा हमारे पास, जो है वो मिल जाएगी चीज, जो संपत्ति है वही तो मिलेगी उसके पास में, से और क्या मिलेगा बताइए। इसलिए उसको जीवित किया है तो जीव हिंसा करेगा तो उसका फल हमारे को भी मिलेगा, प्राप्त होगा। किसी को संकेत देना बताना, जीव हिंसा करना, उसमें मदद करना, उसकी महिमा को पकान करना, सब हिंसा के भागीदार होते हैं, सबको पाप लगता है। लेकिन पुण्य की इच्छा होगी तब, परंतु यदि आप उस पाप से बचना चाहते हो और ऐसी सेवा करना चाहते हो तो पुण्य की इच्छा मत रखो, मेरा कर्तव्य है इस प्राणी की मैं सेवा करूं, बस ऐसा सेवा करने का भाव आप लेकर के उसे जल पिलाओ, भोजन कराओ, और वो भले हजार जानवर मारो, हमारा कोई भी उसे पाप का लेना देना नहीं होगा, क्यों कड़ी नहीं जुड़ी रहेगी, कड़ी नहीं रहेगी, कड़ी हट जाएगी तो कड़ी हटते ही वहां की वो उसकी बात उसके पास में, हमारी बात हमारे पास में, और कड़ी जुड़ गई तो उसका पाप हमारे पास पहुंच जाएगा, ये होता है। तो धर्म पुण्य ग्रहण करने की आशा हम रखते हैं तो ये सबसे बुरी बात है, कोई भी काम में किसी को भी, अगर गरीब को भी एक रुपया दिया और पुण्य होगा, पुण्य की आशा करके दिया है तो उसका पाप हमारे को होगा तो मिलेगा ही। इसी ये आशा छोड़ करके, आशा रहित होकर के दान पुण्य करने की जो प्रथा हमारे खेड़ापा धाम में पूर्वजों ने चालू कर रखी है, पौड़ के ऊपर सूखा अनाज रखा जाता है सदाव्रत देने के लिए, और सदाव्रत देने के लिए आजकल तो लोग बाग नहीं आते हैं, बहुत कम, लेकिन तो पहले खूब लोग मांगने वाले आते थे, और कौन से काड़बेलिया वगैरह जो जीव हिंसक लोग जो जंगलों में रहने वाले वो लोग ही आते थे, तो वो लोग तो आने, उनका काम यही है जीव हिंसा करना, परंतु उनको भी देने का नियम बना दिया, पर इसलिए कि हमें तो अपना कर्तव्य आए हैं, अतिथि भगवान इनको दे दो, आप अतिथि रूप भगवान पधारे हैं इनको दे दो, केवल इसी भाव से देने का नियम बनाने का, देने से इसलिए उनसे कोई लेना देना नहीं, तो वो चालू इसीलिए क्या, यदि पापी को नहीं भोजन दिया जाता तो कभी वहां से ये नियम चालू नहीं करते, इसलिए आशा किसी प्रकार से संबंध जोड़ करके ये दान पुण्य वगैरह नहीं करना चाहिए। तो वो पक्षियों को जो चुग्गा डालते थे, हमारा कर्तव्य है, भगवान ने हमें दिया है तो डाल सकते हैं तो हमें जरूर डालना चाहिए, इसी भाव से वे पक्षियों की सेवा नित्य प्रति करते रहे, करते गए करते गए। कई वर्ष बीत गए, उनकी सेवा चाकरी अबाध रूप से चलती गई, जीव भूत एक एक कर माने, प्रत्येक प्राणी को एक भगवान का रूप मान करके उनके प्रति श्रद्धा भाव रखते हुए वे उनको चुग्गा चुगाया करते थे। जन्म मरण माया ब्रह्म काने, जन्म मरण ये किसका जन्म कहाँ है इससे कोई लेना देना नहीं, इस प्रकार वे जब पक्षियों की सेवा कर रहे थे तो सेवा करते करते देश देशांतर तक दूर दूर देशों में उनकी पक्षियों की सेवा प्रसिद्ध हो गई, महिमा बड़ी। होते होते एक बार गरुड़ जी के कानों में भी ये पक्षियों की सेवा पहुंच गई, इस प्रकार कितनी सुंदर पक्षियों की सेवा हो रही है वहां पर। तो गरुड़ जी के मन में भी इच्छा पैदा हुई कि हम भी जाकर के वहां दर्शन करेंगे, एक रूपये दर्शन करने की इच्छा, गरुड़ आदि दर्शन मन धारे, वे भी मन में दर्शन के लिए ललायत होते, ऐसे धर्मात्मा का दर्शन करने से बड़ा आनंद का अनुभव होता है, शांति का अनुभव होता है। इस विचार से एक दिन की बात, वे पक्षियों के इस सद्विचार के समय में एक दिन एक हंस और एक हंसनी, ये हंसों का जोड़ा वो उड़ता 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 उनके वहां पर चला आया, नेमीचंद के यहां पर पहुंच गया, हंस और हंस का हंसनी का जोड़ा वहां पर पक्षी की सेवा करने वाले हैं। अब उनको मालूम है वहां पक्षियों की सेवा अनाज से करते हैं, हम लोग हंस से कभी अनाज तो चुगते नहीं, वो केवल मोती चुगने वाले हैं, परंतु उनका दर्शन तो होगा, ऐसे सेवा भावे का दर्शन पा करके हम धन्य हो जाएंगे, ऐसा मन में विचार करके और हंस हंसनी उनके यहाँ पर पहुंचे और उन्हें देख करके नेमीचंद ने उन्हें साष्टांग दंडवत करके प्रणाम किया, वंदन किया, उनका स्वागत किया। नेमीचंद भयो आनंदा, पूर्ण पुरुष पधारे बंदा, हंस के रूप में कोई न कोई महापुरुषों का आगमन हुआ है। कर साष्टांग वंद जन चरणा, अब पक्षी को भी दंडवत करना, नहीं पक्षी को नहीं, कोई न कोई सत्पुरुष है इस पक्षी रूप में, अंश के रूप में, इसलिए उनके चरण छुए। आप शुभ गुरु कार्य करना, न्योछावर परिणाम स्वामी वर्णों का अंतर्गत जामी, ऐसे उनके चरणों में वंदन कर अपार हर्ष का अनुभव कर रहे हैं नेमीचंद जी। और हंस उनके यहाँ पर आए और नेमीचंद जी से मिलकर अपने हृदय में शांति का अनुभव कर रहे हैं। बहुत दोनों को आनंद की अनुभूति हो रही है। अभी मध्यान्ह काल का समय, विश्राम का समय हो रहा है, इसलिए लगभग आधा घंटा के लिए अपने मध्यान्ह काल का विश्राम इसी जगह कर लेते हैं। अगला प्रसंग आगे के समय के अनुसार चालू हो, ऐसी मंगल कामना रखनी है अपने को। जय सीताराम, 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 जय सीताराम, 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 सीताराम।